दीवा शिव और नील के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गई थी। दीवा मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि उसे आर्यांश वहां ना देख ले, लेकिन उनका ऑर्डर लेने के लिए आर्यांश ही आया था। आर्यांश वहां मौजूद होकर भी दीवा को अनदेखा कर रहा था और इससे दीवा को यही लगा कि उसे नील के साथ देखकर आर्यांश के मन में किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। दीवा जब वापस घर लौटी तब उसने आर्यांश को अपने घर की तरफ जाते हुए देखा। वो शिव को घर पर छोड़कर आर्यांश के पीछे चली गई थी, जहां उनके बीच अच्छी खासी बहसबाजी हुई। दीवा कितना भी खुद को बदलने का कह दे, लेकिन उससे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली थीं, जिनमें से एक उसका हद से ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होना था। बातों ही बातों में आर्यांश के मुंह से शिव का नाम निकला, जिसे सुनकर दीवा चौंक गई थी। वो जल्दी से दौड़कर आर्यांश के सामने गई और उससे शिव के बारे में पूछा। आर्यांश के पास जवाब देने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और बिना किसी भाव के कहा, मुझे कैसे पता होगा, तुमने ही तो उसका नाम बताया था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी तुम्हें उसका नाम नहीं बताया और ना ही तुम्हारे सामने उसका जिक्र किया। क्या उस बच्चे को लेकर तुम्हारे मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं है? तुमने एक बार भी उसे लेकर कोई सवाल क्यों नहीं किया? दीवा जवाब में बोली। उसे अभी भी आर्यांश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने नहीं बताया होगा, लेकिन जब तुम रेस्टोरेंट में बच्चे को लेकर आईं, तब मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के मुंह से सुन लिया होगा। रही बात उसके बारे में कुछ पूछने की, तो तुमसे सवाल जवाब करने का हक मैं पहले ही खो चुका हूँ। काफ़ी रात हो गई है और मुझे भूख भी लगी है, जाने दो, आर्यांश ने दीवा को टालना चाहा। उसे वहीं छोड़कर आर्यांश आगे बढ़ने लगा, लेकिन दीवा फिर से उसके रास्ते के बीच आ गई थी। उसने आर्यांश की आंखों में देखा और सिर हिला दिया था। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम यहां से हिल भी नहीं सकते हो। मेरी किसी भी फ्रेंड ने उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उसे उसके नाम से नहीं बुलाती हैं। तुम्हें उसकी चिंता क्यों है? और तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम उस दिन उससे पहली बार नहीं मिले थे, दीवा ने आर्यांश की आंखों में देखते हुए पूछा। आर्यांश बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि दीवा उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। अचानक दीवा के सामने एक एक घटना घूमने लगी थी। उसे आज भी अच्छे से याद था सुलेखा किस तरह अचानक उसके कमरे में बच्चे को ले आई थी, वो भी उस समय जब उसने अपना बच्चा खोया था। कुछ शक करने पर दीवा को पता चला था कि सुलेखा ने उसी दिन ज्वाइन किया था और उसे नीचे की फ्लोर्स की सफाई करने का काम मिला था। फिर वो ऊपर शिव को उसी के कमरे में क्यों छोड़कर गई? शिव के आने से पहली रात ही दीवा आर्यांश से आखिरी बार मिली थी। अब उसे कुछ भी इत्तेफाक जैसा नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही। दीवा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो गुस्से में आर्यांश के सीने पर मारने लगी थी। तुम क्यों मुझे हमेशा तकलीफ देते रहते हो? दीवा ने रोते हुए पूछा। तकलीफ देता हूँ तभी दूर रह रहा हूँ। लगता है तुम्हें अपनी खुशियों से प्यार नहीं है दीवा गोयनका, जो बार बार मेरे पीछे चली आती हो, आर्यांश ने कड़वाहट भरे स्वर में जवाब दिया। तुमने भेजा ना उस औरत को मेरे पास? शिव की माँ को तुमने मेरे पास भेजा था, क्योंकि उस वक्त मैं अकेली थी और अपने बच्चे को खोने का दर्द मेरी बर्दाश्त के बाहर था। दीवा को धीरे धीरे सब समझ आ गया था। आर्यांश भले ही उससे दूर था, पर फिर भी उसने दूर रहकर भी दीवा का दुख दूर करने की कोशिश की। दीवा ने रोते हुए आर्यांश के कंधे पर सिर रख लिया था, जबकि आर्यांश बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। आर्यांश ने उसे सहलाने के लिए अपना हाथ तक नहीं उठाया था। वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपका रहा था, ताकि दीवा को रोते देखकर वो खुद इमोशनल ना हो जाए। उस लम्हे को याद करना उन दोनों के लिए ही काफ़ी तकलीफदेह था। आर्यांश ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर रखा था। उसने काफ़ी देर बाद हिम्मत करके धीमी आवाज़ में कहा, मैंने बस उस औरत को काम दिलाया था। उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था और उसे काम की ज़रूरत थी, साथ में छोटा बच्चा भी था। आर्यांश दीवा को सफाई दे रहा था, तभी दीवा उससे अलग हुई और आर्यांश की आंखों में देखते हुए कहा, और उसे मेरे पास भेजा था कि मैं शिव के साथ रहकर अपना दुख भूल जाऊं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ताकि तुम मेरे साथ साथ उस बच्चे को भी नफरत भरी नजरों से ना देखो, आर्यांश ने जवाब में कहा। उस समय उनका रिश्ता सच में इस कदर बिगड़ा हुआ था कि अगर आर्यांश खुलकर दीवा की मदद करता या उसके सामने आता, तो उसे यही लगता कि इसमें भी आर्यांश का कोई फायदा छुपा हुआ है। इससे पहले कि पुरानी बातों का जिक्र होता और दीवा टूट जाती, आर्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, ठंड पड़ रही है, ऊपर से तुमने ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं, बच्चा भी घर पर अकेला होगा, उसे संभालो, उसे अपने साथ काम पर मत लेकर जाया करो। जगह भले ही छोटी है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों के लिए एक्टिविटी क्लासेस और डे केयर की फैसिलिटी मौजूद है। पूरे दिन हॉस्पिटल में वो थक जाता होगा। दीवा ने अपने आंसू साफ किए और हल्के से सिर हिला दिया था। दीवा को समझाने के बाद आर्यांश उसे खुद घर तक छोड़ने के लिए आया था, वरना फिर से वो उसके पीछे आने लगती, लेकिन इस बार दीवा उससे कोई सवाल पूछने के बजाय पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश थी। दीवा के दरवाजे पर खड़े होकर आर्यांश ने कहा, जाकर सो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि अब मुझे नींद आएगी? दीवा ने आर्यांश से नजरें चुराते हुए कहा, उसका इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आर्यांश ने जानबूझकर रूखे शब्दों में जवाब दिया और दीवा को वहीं पर छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकल गया था। दीवा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी। आज दीवा आर्यांश को एक अलग ही नजरिए से देख रही थी। ना तो उसके दिल में आर्यांश के लिए गुस्सा था और ना ही नफरत। उसके लिए आज आर्यांश वो शख्स था जिसने दूर रहकर भी उसको उस समय में संभाला था, जब वो सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। तुम सच में बदल गए हो आर्यांश, दीवा के मुंह से निकला। जब आर्यांश दीवा की नजरों से ओझल हो गया था तब वो अंदर चली गई थी। वहीं आर्यांश को घर पहुंचने में रात के 10 बज चुके थे। आज का खाना समीक्षा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। सुमन दवाइयां लेकर सो चुकी थी जबकि समीक्षा उसका इंतजार करते हुए बाहर चहलकदमी कर रही थी। उसके पास आर्यांश का कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं था जिससे वो कॉल करके उससे उसके आने का टाइम पूछ सके। जैसे ही आर्यांश ने घर के अंदर कदम रखा, समीक्षा जल्दी से उसकी तरफ दौड़ कर गई और उसे घूरते हुए देखने लगी। आर्यांश उन नजरों का मतलब अच्छे से समझता था। पता है ना, पहले भी मैं ऑफिस से कई बार लेट आता था, आर्यांश ने सफाई में कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? 3 साल से यहाँ रह रहे हो फिर भी वेदर सूट नहीं हो रहा ना, क्या जरूरत है इस जगह पर रहने की? मैंने तुम्हें अब्रॉड भेजने के लिए कितना इंसिस्ट किया था, लेकिन नहीं, तुम अपनी माँ को इस तरह कैसे तकलीफ दे सकते हो आर्यांश, समीक्षा ने भारी आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर आर्यांश हल्का सा मुस्कुरा दिया था। थोड़ी देर पहले दीवा ने भी उसे यही कहा था कि वो हमेशा उसे तकलीफ पहुंचाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके गुस्से से ही पेट भरना होगा? आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया था और उसे 2 बार गर्म कर चुकी हूँ, अब तक तो 3री बार गर्म करने पर वो खराब हो जाएगा, समीक्षा ने शिकायत लगाई। आपके हाथ का होगा तो फिर भी टेस्टी ही होने वाला है, चलिए अंदर चलते हैं। आर्यांश ने समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा।
वो जानता था कि उसके इंतजार में समीक्षा ने भी कुछ नहीं खाया होगा। समीक्षा ने यही सोचा था कि आज वो पूरी रात बैठकर आर्यांश से बात करेगी, उससे उसके पिछले 3 सालों का हाल पूछेगी। जबकि उससे अलग आर्यांश को ये चिंता सता रही थी कि समीक्षा के घर पर होने की वजह से वो रात को अपने काम पर नहीं जा पाएगा। खाना हो जाते ही समीक्षा ने जल्दी से कहा, मैं रूम में इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आप चलिए मैं आता हूँ। आर्यांश ने जवाब दिया और उठकर बाहर आ गया था। उसने तुरंत उस आदमी को कॉल किया जिसके लिए वो काम करता था। जैसे ही आर्यांश ने ये कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा, दूसरी तरफ से वो आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था। क्या मतलब नहीं आ पाओगे? तुम्हारी वजह से मैं दूसरे आदमियों को भी नहीं बुलाता और तुम्हें उन सबके पैसे देता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जो भी काम है उसे ख़त्म करो और जल्दी आओ। तुम मुझे फ्री के पैसे नहीं देते हो, जिन आदमियों के काम के पैसे तुम मुझे देते हो वो काम भी मैं ही करता हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, किसी और को बुला लो और आगे से मुझसे इस टोन में बात मत करना, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा और कॉल कट कर दिया। वहीं आर्यांश के अचानक कॉल काटने पर वो आदमी स्क्रीन की तरफ घूर कर देख रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, नखरे तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कहीं का शहजादा हो, कल काम पर आएगा तो मैं इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। वहीं आर्यांश उस आदमी से बात करके कमरे में पहुंचा तो समीक्षा वीडियो कॉल पर थी। दूसरी तरफ मनीष और वर्तिका थे, उनके साथ श्रेष्ठ भी था। आर्यांश के कमरे में कदम रखते ही समीक्षा खुश होकर बोली, जल्दी मेरे पास आओ, देखो तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं, वर्तिका और श्रेष्ठ भी हैं। आर्यांश का चेहरा साफ बता रहा था कि वो उनसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी समीक्षा ने उसे अपने पास खींच लिया था। आर्यांश का बना हुआ मुंह देखकर श्रेष्ठ बोला, देखो तो कितना बदल गया है, बताया नहीं कि वकेशन करने के लिए इस तरह की जगह पर जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलते, मुझे अपनी शांति को बर्बाद नहीं करना था जो तुम्हें बताकर जाता, आर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा। श्रेष्ठ से बात करते हुए आर्यांश की नज़र मनीष पर गई, जो आंखों में आंसू भरे उसे देख रहे थे। जब से आर्यांश ने कपूर इंटरनेशनल संभाला था, मनीष मुश्किल से ही वहां जाते थे, लेकिन आर्यांश के जाने के बाद सारा काम उन्हें संभालना पड़ रहा था। उनके चेहरे पर मौजूद थकान साफ बता रही थी कि आर्यांश के ना होने की वजह से उनका काम कितना बढ़ गया था। आपको 1-2 बच्चे और पैदा करने चाहिए थे ताकि मेरे नालायक निकलने पर वो आप पर काम का बोझ नहीं बढ़ने देते, आर्यांश ने नजरें झुकाकर कहा। और किसने कहा कि तुम नालायक हो, समीक्षा तुरंत बोली, तुमने कुछ गलतियां की हैं और उनकी तुम काफी सजा भुगत चुके हो, अब तो दीवा ने भी तुम्हें माफ कर दिया, वरना वो कभी तुम्हारा एड्रेस हमें नहीं बताती, उसे भी तुम्हारी चिंता है। समीक्षा की बात सुनकर वर्तिका और मनीष ने अपना सिर पकड़ लिया था। दीवा ने साफ कहा था कि उसका नाम आर्यांश के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी बातों बातों में समीक्षा ने दीवा के बारे में बता दिया था। हालांकि बोलने के बाद समीक्षा को भी एहसास हो गया था और उसने अपने हाथों को मुंह पर रख लिया था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, मुझे पहले से ही पता था, ये सब उसी ने किया है तो उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। क्या आप उससे मिले थे? आप दोनों के बीच सब ठीक हो गया क्या? वर्तिका ने जल्दी से पूछा। उसकी आंखों में ये सोचकर ही चमक आ गई थी कि दीवा और आर्यांश फिर से साथ हो गए हैं। अगर दीवा आर्यांश को माफ कर देती तो जाहिर सी बात थी कि उनकी दादाजी के पास आर्यांश से नाराजगी का कोई कारण नहीं रहता। आर्यांश ने गहरी सांस लेकर मायूस स्वर में कहा, अब हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, तो ये उम्मीदें छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि सुमन माँ के पास अब ज्यादा टाइम बचा है, और उनकी इच्छा यही है कि वो अपना आखिरी समय उस घर में बिताएं जहाँ उनका जन्म हुआ था। प्लीज आप मॉम को वापस ले जाइए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आर्यांश ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसे सुनकर उन सबका दिल टूट गया था। ना तो आर्यांश और दीवा के बीच कुछ ठीक हो रहा था और ना ही आर्यांश वापस आने के लिए तैयार था। आर्यांश का वो फैसला कॉल पर मौजूद श्रेष्ठ, वर्तिका और मनीष ने ही नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े पृथ्वी ने भी सुना था। लगता है अब पृथ्वी के ही बीच में आने से ही सब ठीक होगा, क्योंकि आर्यांश तो अपनी जिद पकड़कर बैठ गया है। आर्यांश को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर वो दीवा की जिंदगी में दोबारा गया तो उसे हर्ट कर देगा। बस यही वजह है कि वो खुद को उससे दूर रखना चाहता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। अच्छा, आपके सवालों के जवाब, सुमन माँ आर्यांश की क्या लगती हैं? आंसर, कुछ नहीं। आर्यांश ने उनकी जान बचाई थी, वो बस उन्हें माँ की तरह रखता है। एक अनकहा सा रिश्ता है, दर्द का। शिव के बारे में आर्यांश कैसे जानता है? आंसर, शिव को दीवा तक पहुँचाने वाला आर्यांश ही तो है, फिर क्यों जानेगा।